अब तो सबकी जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी और वे जल्दी जल्दी पूछने लगे, दादाजी प्लीज, कुछ तो ऐसी बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं, बताइए ना, आप बातें गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? तब दादाजी ने बारी बारी से सबको देखा और उदास होकर बोले, फ्लैशबैक। वसुंधरा के धोखे और यातना के बाद वसुंधरा जो अरमान की जान लेना चाहती थी, अरमान काफी दिनों तक सदमे में रहा। उसकी मानसिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी, वो काफी अजीब व्यवहार करने लगा था। तब उसका इलाज जिस डॉक्टर ने किया था वो यही डॉक्टर था, राजवीर जिंदल नाम के एक नंबर का पागल और सनकी डॉक्टर। धीरे धीरे अरमान इससे काफी अटैच होने लगा था और उससे घुलने मिलने लगा। इतना ही नहीं, जो कुछ भी ये डॉक्टर करता था अरमान भी उसे कॉपी करने लगा था। एक बार इस डॉक्टर की पत्नी को इस अस्पताल में काम करने वाले एक सीनियर डॉक्टर ने छेड़ दिया था। उस वक्त अरमान वहीं अस्पताल में मौजूद था। फिर उसी रात राजवीर जिंदल ने अपने सीनियर डॉक्टर की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, ये हत्या उसने किसी और के सामने नहीं बल्कि अरमान के सामने की थी। बड़े ही खौफनाक तरीके से उसने अपने सीनियर डॉक्टर के लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उसकी आंखें तक बाहर निकाल दी थीं, और जिस हाथ से उसने उसकी बीवी को छुआ था उस हाथ के सबसे पहले उसने जिंदा रहते नाखून उखाड़े, उसके बाद एक एक उंगली उखाड़े। वो चिल्ला ना सके इसके लिए उसने उसके मुंह में खूब सारा कपड़ा ठूस दिया था, और फिर बड़ी ही बेरहमी से अरमान की आंखों के सामने उस डॉक्टर ने अपने सीनियर डॉक्टर की जान ले ली थी। उसके मुंह में खूब सारा कपड़ा ठूस दिया था और फिर बड़ी ही बेरहमी से अरमान की आंखों के सामने उस डॉक्टर ने अपने सीनियर डॉक्टर की जान ले ली थी। अब आगे, उस वक्त वो पूरा खून में सन चुका था और फिर अरमान के पास जाकर सर्द आवाज में बोला, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी बीवी को करना चाहिए, और अगर कोई तुम्हारी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो उन आंखों को नोच लो, उसको इससे भी ज्यादा बुरी और भयानक मौत दो। ये बात उसने एक छोटे से नन्हे मुन्हे नाजुक दिल के बच्चे अरमान को सिखाई थी, क्योंकि अरमान उसे अपनी माँ के धोखे के बारे में बता चुका था और उसकी माँ उसे किस तरह से यातना देती थी, ये सारी बातें भी अरमान ने राजवीर से शेयर की थी। इसलिए राजवीर ने औरत को किस तरह से वश में रखना है, किस तरह से उन्हें अपने काबू में रखना है, और अगर कोई तुम्हारी औरत की ओर आंख उठाकर भी देखे तो उसका क्या हाल करना है, ये सारी बातें नन्हे अरमान के दिलो दिमाग में अच्छी तरह से बिठा दी। वहीं अरमान पूरी तरह से अब राजवीर जैसा पत्थर दिल बनने लगा, और मैं सारा दिन अरमान और अपना गुजारा करने के लिए मेहनत से काम किया करता था और रात में उसके पास जाया करता था। उस वक्त वो मुझसे सिर्फ राजवीर की ही बातें किया करता था। पहले तो मैंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उस मर्डर के बारे में सारी बातें अरमान ने मुझे बताई तो मैं पूरी तरह से हिल गया, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं राजवीर जिंदल को कुछ कह सकूं या उसके खिलाफ शिकायत कर सकूं, क्योंकि उस वक्त मैं खुद मजबूर बेसहारा था, मेरे पास किसी का कोई सहारा नहीं था और मेरा अरमान को उस अस्पताल में रखने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन हद तब हो गई जब उसे अस्पताल में एक और मानसिक रूप से बीमार बच्चा एडमिट हुआ। वो बच्चा 14-15 साल का था और अरमान उस वक्त केवल 7-8 साल का था, और फिर अचानक उस छोटे से बच्चे का इलाज वो राजवीर जिंदल कर रहा था। वो मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, उसके साथ एक छोटी बहन भी वहां आई थी। तब जब राजवीर जिंदल उस मानसिक बीमार बच्चे को एक इंजेक्शन दे रहा था तब उस बच्चे ने राजवीर के हाथों पर काट लिया। ये बात अरमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि वो डॉक्टर से कुछ ज्यादा ही अटैच हो गया था, और फिर जब वो बच्चा अपने वार्ड में था अरमान ने ठीक उसी तरह से जिस तरह से राजवीर जिंदल ने सीनियर डॉक्टर की जान ली थी ठीक उसी तरह से उस छोटी मासूम बच्चे की जान ले ली थी, वो भी बड़ी ही बेरहमी से उसकी जान ले ली थी। उस वक्त जब मैंने ये सारा नज़ारा देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी थी। मैं उसी रात अरमान को अस्पताल से लेकर भाग गया था, और अरमान को उस दिन मैंने बहुत मारा था और उसे डराया धमकाया कि वो आगे से कभी भी उस डॉक्टर से नहीं मिलेगा। उस दिन के बाद से वो डॉक्टर अरमान की ज़िंदगी में नहीं आया, लेकिन आज जब तुमने मुझे उसके बारे में बताया और मैंने सुना कि उस डॉक्टर ने किस तरह से मर्डर किया और अरमान उसके साथ है, तो मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये वही बेरहम डॉक्टर है। अब जैसे ही दादाजी ने ये सारा सच बताया सबके चेहरे ऐसे हो गए जैसे सबको किसी ने बहुत बुरी तरह से मार पीट दी हो। तब आहान मायूस होकर पूछता है, लेकिन दादाजी मैंने तो जब से होश संभाला है आपको काफ़ी ताकतवर समझा है, इतनी सारी शक्ति आपके पास थी फिर आपने उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? तब दादाजी आहान का हाथ पकड़कर बोले, बेटा उस वक्त मैंने राजवीर के खिलाफ एक गुमनाम शिकायत कर दी थी। इसके बाद सुनने में आया कि राजवीर ये शहर छोड़कर कहीं चला गया है और उसे कुछ सजा भी हुई है। फिर उसके बाद जब एक दिन मुझे मेरा बचपन का दोस्त यानी तेरे दादाजी मिले, उस वक्त तेरे दादाजी एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे। तुम्हारे माता पिता बहुत पहले ही दुर्घटना का शिकार हो गए थे। तब हमें अपनी पहचान छिपाने का और नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का एक रास्ता नजर आया। मैंने तेरे दादाजी की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया और अपने जिंदा रहते तेरे दादाजी ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। तुम जानते हो ना, वो पुराना सिंघानिया मेंशन जो हमारे मेंशन के ठीक 2 किलोमीटर दूरी पर है, जो काफी सालों से बंद पड़ा है, वो सिंघानिया मेंशन तुम्हारा है। तुम्हारे दादाजी ने उसे तुम्हारे नाम पर कर दिया था। इतना ही नहीं, जो तुम्हारे दादाजी की कंपनी थी उसके जो शेयर थे सिंघानिया कंपनी में, जो भी तुम्हारे शेयर हैं, वो सब मैंने तुम्हारे नाम कर दिए थे। उसके बाद अरमान ने कंपनी का काम अपने हाथ में संभाल लिया और सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है। अरमान ने बहुत जल्दी इतनी ज्यादा तरक्की कर ली जिसे हरा पाना अब किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। अब सारा सच सबके सामने था और अब सबको अरमान का व्यवहार समझ में आने लगा था कि अरमान सबसे ज्यादा हटकर अजीब तरह से जान कैसे लेता है, क्यों वो लोगों को बड़ी ही अजीब मौत देता करता था, क्योंकि छोटे से अरमान को बड़ी ही कम उम्र में राजवीर जिंदल ने जान किस तरह से खौफनाक तरीके से लेनी चाहिए सिखा दिया था। और साथ ही साथ आस्था के लिए अरमान इतना ज्यादा ओवर पोजेसिव क्यों था, ये बात भी अब उन सबको समझ में आ गई थी। तभी ध्रुव, जो काफी देर से खामोश था, कुछ देर सोचते हुए बोला, लेकिन दादाजी, इस तरह से तो अरमान भाई सभी के लिए बहुत ज्यादा खतरा बन सकते हैं। अगर अरमान भाई इसी तरह से व्यवहार करते रहे तो ये उनके लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं होगा। हमें उन्हें रियलिटी का सामना करवाना पड़ेगा, हमें उनका इलाज करवाना चाहिए। तब दादाजी बोले, मुझे तो लगा था कि ये डॉक्टर जब उसकी जिंदगी से चला जाएगा तो उसकी जिंदगी अपने आप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन आज जिस तरह से वो उस डॉक्टर से मिला है तो मुझे अब डर सताने लगा है कि कहीं अरमान के अंदर का सोया हुआ शैतान ना जाग जाए। सभी लोग अभी इस बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी आकाश का फोन बजने लगा। फोन रश्मि का था। रश्मि का फोन आने पर आकाश ने कान पर फोन लगा लिया। तब रश्मि ने आकाश को बता दिया कि अरमान का फोन आया है, आस्था बेहोश हो गई है, वो उसे लेकर घर आ रहा है। अब जैसे ही उन सब ने सुना, सब हैरान हो गए और उसने बाकी सबको भी ये जानकारी दे दी। दादाजी अब आस्था को लेकर परेशान हो गए और फिक्र जताते हुए बोले, हमें अब इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी है, फटाफट से सब सिंघानिया मेंशन की ओर चलो। ऐसा बोलकर दादाजी सबको लेकर सिंघानिया मेंशन रवाना हो चुके थे।
वहीं अरमान आस्था को बड़ी ही बुरी तरह से देख रहा था कि आस्था इस तरह से बेहोश कैसे हो सकती है। वो कभी आस्था के गालों को छू रहा था तो कभी उसके हाथों को मसल रहा था और दीवानगी से बोल रहा था, आस्था उठो प्लीज, वेक अप, अपनी आंखें खोलो, आस्था आंखें खोलो, क्या हुआ है, तुम बेहोश कैसे हो गई हो। अरमान बार बार पूरी गाड़ी में आस्था से ये सवाल कर रहा था, लेकिन आस्था बेहोश थी, वो अरमान का एक भी सवाल नहीं सुन पाई। जल्दी ही अरमान ने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने के लिए कह दिया था और गाड़ी जल्दी ही सिंघानिया मेंशन के बाहर खड़ी हुई। रश्मि ने नानी माँ को बता दिया था कि अरमान का फोन आया था और आस्था की तबीयत खराब हो गई है, वो उसे लेकर घर ही आ रहा है, तो नानी माँ चिंता में डूब गई थीं और बस अपनी आस्था की ठीक होने की प्रार्थना करने लगीं कि बस उसकी आस्था को कुछ ना हो, ना ही उसके बच्चे को कुछ हो। जल्दी ही अरमान आस्था को गोद में लेकर मिनी हॉस्पिटल में ले आया था। नानी तुरंत आस्था के पास जा पहुंची और उसे उठाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन आस्था उस वक्त बेहोश थी, उसे कुछ समय किसी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। तभी डॉक्टर रश्मि ने आस्था को चेक करना शुरू कर दिया था। अरमान वहीं खड़ा हो गया और एक मिनट के लिए भी वहां से नहीं हटा। हालांकि डॉक्टर रश्मि ने बोला भी था कि आप सभी बाहर चले जाइए, मुझे आस्था को अच्छे से चेक करने दीजिए, लेकिन राधिका और नानी माँ तो बाहर निकल गए थे। रश्मि ने राधिका और नानी माँ को बाहर जाने के लिए बोल दिया था। वो दोनों तो बाहर चले गए थे, लेकिन अरमान वहीं का वहीं खड़ा रहा। वहीं एक पल के लिए रश्मि की नज़र अरमान के चेहरे पर जाकर ठहर गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ तो ऐसा था जो बड़ा ही अजीब था। वेल, जल्दी ही डॉक्टर रश्मि ने आस्था को चेक करना शुरू कर दिया था, लेकिन आस्था बिल्कुल ठीक थी, उसका बच्चा भी ठीक था, लेकिन आस्था को कोई ऐसा झटका लगा था, कोई ऐसा सदमा लगा था जिसकी वजह से वो इस तरह से बेहोश हो गई थी।